भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गतिरोध अब भी बना हुआ है। कुछ इलाकों में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। भारत का कहना है कि क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनाने के लिए सैनिकों को पीछे हटना ही होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची गुरुवार को पत्रकार वार्ता में इस बारे में कहते हैं।
Let me reiterate that early completion of disengagement in the remaining areas could pave the way for both sides to consider de-escalation of forces and ensure full restoration of peace and tranquility, and thereby enabling progress in bilateral relations.
पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर भारत पर कई आरोप लगाए जाते रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को एक पत्र लिखकर कश्मीर के जनसंख्या स्वरूप को बदलने का आरोप भारत पर लगाया। इस पर अरिंदम बागची कहते हैं।
Look, I will only say that the Union Territory of Jammu and Kashmir is an integral part of India. No amount of questioning can change this reality. Also, cross-border terrorism is unacceptable, and no amount of justification can make it acceptable.
चीन और पाकिस्तान दो ऐसे पड़ोसी हैं जो गाहे बगाहे भारत को परेशानी में डालते रहते हैं। इसके उलट बाकी पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हैं। पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी भारत के बेहतर रिश्ते हैं। इसे और बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को असम के दौरे पर थे। वहां उन्होंने उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास पर संतोष जताते हुए कहा कि इस क्षेत्र के चलते भारत के रिश्ते पूर्वी एशियाई देशों के साथ बेहतर हो रहे हैं।
नॉर्थ ईस्ट रीजन के माध्यम से हमारे ईस्ट एशिया के साथ भी अच्छे रिश्ते ये स्वाभाविक रूप से बनेंगे, अब हैं हमारे, और अच्छे अधिक बेहतर होंगे। ट्रेड, टूरिज्म और इन सब सारी चीजों की दृष्टि से भी हमारा ईस्ट एशिया के देशों से भी हमारा संबंध बढ़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट को तो मैं कहता हूं कि यह भारत का दाहिना हाथ है, और भारत का दाहिना हाथ जितना ही मजबूत होगा, भारत उतना ही मजबूत। यह हमारी सरकार का मानना है, यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि भारत का दाहिना हाथ जितना ही मजबूत होगा, हमारा भारत भी उतना ही मजबूत होता है।
भारत को शांति और अहिंसा का पुजारी बताते हुए राजनाथ सिंह कहते हैं,
भारत का जहां तक प्रश्न है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम तो शांति के पुजारी हैं, हम तो शांति चाहते हैं। हमने कभी एग्रेशन भारत की तरफ से कहीं भी नहीं होने दिया है, दुनिया के किसी देश के साथ, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो। एग्रेशन हमने कभी नहीं दिखाया है, लेकिन भारत के अंदर वह कुवत है कि यदि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह भारत की हमारी यह ताकत भी। लेकिन हम तो विश्व शांति के पुजारी हैं, हम सबसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह तो भारत से ही संदेश सारे विश्व को गया है। हम तो पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, इसलिए किसी के साथ अथवा किसी के प्रति एग्रेशन को दर्शाना यह कभी हमारा उद्देश्य नहीं रहा है।
राजनाथ सिंह का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार पूर्वोत्तर इलाके की समस्याओं पर काबू पाने में कामयाब रही है। और अब बात हरियाणा की, जहां बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार ने 600 दिन पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पीठ खुद थपथपाई। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उनकी सरकार ने कई काम किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कृषि से जुड़े 3 कानूनों को किसान के हित में बताते हुए मनोहर लाल खट्टर कहते हैं,
इन 3 कानूनों का कोई दुष्प्रभाव ऐसा नहीं है जिस प्रकार का प्रचारित किया जा रहा। पीछे हमारे जो फार्मर्स थे, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, उसने भी मैंने कहा था कि हम इनका उपयोग करना शुरू करें, एक बार इसको लागू होने दें, लागू होने के बाद कोई भी उसका दुष्प्रभाव होगा तो आखिर किसान भी इस देश के हैं, सरकारें भी इस देश की हैं, लागू करने वाले भी यहीं के लोग हैं, सब मिलकर के इसके ऊपर फिर विचार करेंगे कि हम लोग इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। हम किसानों की सब सुविधाएं वो आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, कहीं इसमें कमी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ प्राथमिकताएं जो तय की हैं उसके अनुसार किसानों को भी सहयोग करना चाहिए।
हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। 600 दिन पूरे होने पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कुछ सवाल सरकार से पूछे।
श्री मनोहर लाल खट्टर ने 600 दिन पूरे करने पर बड़े बड़े कसीदे पढ़े। खट्टर साहब, इवेंट जीवी जी, सच्चाई ये है कि 600 दिन में आपने और आपके उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी ने इतना विकास करवाया है कि हरियाणा के लोग आप जहां जाते हैं वहां से उन्हें तत्काल भगा देते हैं कि कहीं विकास की ओवरडोज ना हो जाए। खट्टर साहब बताइए, दुष्यंत चौटाला जी बताइए कि बेरोजगारी दर में हरियाणा हिंदुस्तान में पहले नंबर पर क्यों? खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी बताइए कि अपराध में हरियाणा पहले नंबर पर क्यों? बताइए कि 7 माह से लाखों किसान हरियाणा की सड़कों पर टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर क्यों? बताइए कि 600 दिन के बाद हरियाणा प्रदेश कर्ज की गर्त में डूबा क्यों?
उधर बिहार से संबंध रखने वाली लोक जनशक्ति पार्टी में फूट पड़ने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को हटा दिया गया है। उनकी जगह उनके चाचा पशुपति पारस को नया अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद पशुपति पारस ने पार्टी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है, कोई विरोध नहीं है। यदि मतभेद होता, विरोध होता, तो मैं निर्विरोध निर्वाचित नहीं होता। मैं सभी लोगों का मैं सम्मान करता हूँ और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि भविष्य में मैं इस पार्टी को निश्चित रूप से आगे बढ़ाऊंगा और देश के पैमाने पर इस पार्टी को मैं ले जाऊंगा।
और चलते चलते बात राम मंदिर चंदा विवाद की। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए एकत्र चंदे के दुरुपयोग का आरोप राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट पर लग रहा है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए जमीन सौदे विवाद के केंद्र में है। इसके अलावा पुराने मंदिरों को खरीदे जाने और उसे तोड़ने का आरोप भी ट्रस्ट पर लग रहा है। रामालय ट्रस्ट के अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जांच की मांग करते हुए कहा,
मंदिर बनाने के लिए जो पैसा लिया गया है उस पैसे से मंदिर खरीदे जा रहे हैं और खरीद करके उनको तोड़ा जा रहा है। उनके अंदर की मूर्तियां कहाँ जा रही हैं, क्या उनके साथ हो रहा है, पूजा अर्चना बंद कर दी जा रही है, तो ये बड़ी चिंता का हमारे लिए विषय है। तो हमने सोचा कि इनकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करने के लिए स्वाभाविक है, सीधे जा करके बाहु का बल तो दिखाया नहीं जा सकता, तो विधिक प्रक्रिया अपनानी होगी।
चंदे में घपलेबाजी या दुरुपयोग की जांच को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार मांग कर रही हैं। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे को गरमाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।